स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी जो हमारे लिए दी गई है, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, हमें सिखा रहा है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, तो आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने मन के तैयारी के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि हम अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण करने पाएं। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी, आप हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि वे आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हमारी प्रार्थना है उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आपके वचन को सुनने की लालसा रखते हैं। पिताजी, आप उनके हृदयों को छुएं ताकि वे इस बात को समझने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारी बहन रूपा गुप्ता के लिए। पिता परमेश्वर, आप उसके जीवन के हर एक परेशानियों को जानते हैं, उसके जीवन के हर एक जरूरतों को जानते हैं। हमारी विनती है कि आप हमारे बहन की प्रार्थनाओं को सुने, उसके जीवन में, उसके परिवार में अपनी शांति दे, ताकि परमेश्वर आपकी उन आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए, आपको महिमा देने पाए। आज के वचन से हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, यद्यपि कि हमारा विषय वही है जो पिछले अध्ययन में हमारा था, विश्वव्यापी कलीसिया। परंतु थुआथीरा को भेजा गया प्रभु का संदेश समाप्त हुआ और अब वह सर्दिस की कलीसिया को पत्र लिखता है। सर्दिस की कलीसिया को प्रभु यीशु का पत्र। मेरे मित्रों, कलीसिया के इतिहास में सर्दिस की कलीसिया प्रोटेस्टेंट कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका समय सन 1570 से 1800 तक था। इस परिवर्तन का आरंभ उस समय हुआ जब मार्टिन लूथर ने अपने 95 लेख जर्मनी के विडनबर्ग आराधनालय के द्वार पर टांग दिया, अर्थात ठोंक दिए थे। यह युग सुधार आंदोलन से आरंभ होता है और कलीसिया के इतिहास में महान सेवा या मिशनरी अभियान तक ले जाता है। सर्दिस लुदिया साम्राज्य की राजधानी थी। यह एशिया माइनर की प्राचीनतम नगरों में से एक था और अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। भीतरी भूभाग में हर्मस नदी की तराई में एक उभरे हुए पठार पर बसा नगर था। एक ओर को छोड़कर यह नगर चारों ओर से चिकनी और सीधी चट्टानों से घिरा हुआ था, जिन पर चढ़ना संभव नहीं था। वहां तक पहुंचने का एक ही दुर्गम मार्ग था, जो दक्षिण की ओर से था। आबादी और व्यापार के विकास के कारण यह पठार छोटा पड़ने लगा, तो मुख्य रूप से पश्चिम की ओर एक और नगर बसाया गया। प्राचीन नगर को गढ़ के समान काम में लिया जाने वाला यह एक नगर था। यही कारण है कि इसका नाम बहुवचन में है। जी हाँ, पेक्टोलस नदी के कारण उस क्षेत्र में हरियाली की बहुतायत थी। कालीन का मुख्य केंद्र होने के कारण वह एक धनवान नगर था। यहीं पर सबसे पहले सिक्के बनाए गए थे। जी हाँ, वहां का अंतिम राजकुमार क्रोएसस था, जिसे कुसरू बंदी बनाकर ले गए। वह संसार का सबसे अधिक धनवान मनुष्य था। ऐसा लगता था कि वह जिस वस्तु को छू ले वह सोना बन जाती थी। फारसी सिकंदर एंटियोकस महान तदोपरांत रोम ने वहां राज्य किया। तिब्रियास के राज्य में वहां भूकंप आया और यह नगर नष्ट हो गया था। आज वहां डायना और अपोलो के मंदिरों के खंडहर हैं। वे संसार के दो मंजिल मंदिरों में से हैं। यहां उसे प्रकृति की देवी मानते थे और अपोलो को सूर्य देवता मानते थे। ये देवी देवता भाई बहन थे। इनकी उपासना में भ्रष्टाचार था, जैसे इफिसूस में डायना की उपासना में था। मेरे प्रियो, पुरातत्व विभाग ने वहां व्यापक खुदाई की है और रोमी युग का मार्ग खोजा है। वे व्यायामशाला और यहूदियों का आराधनालय फिर से बना रहे हैं। रोमी मार्ग को देखकर आप उत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि पौलुस उसी मार्ग पर आवागमन करता था। तो आइए इस अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, सर्दिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, लिखा है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है, सर्दिस की कलीसिया से वह कहता है कि उसके पास 7 आत्माएं हैं, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजने वाला वही है। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि सर्दिस की कलीसिया प्रोटेस्टेंट कलीसिया को दर्शाती है। आज कलीसिया को पवित्र आत्मा के कामों की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि हमें निश्चित नमूनों की आवश्यकता है और हम छोटे मोटे पाठ्यक्रम सीखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु के निकट आएं, और पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रभु यीशु को जीवित एवं यथावत प्रकट करता है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया को इसी की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अंधकार के युग की अंधेरी रात के बाद भी पवित्र आत्मा संसार में अपना काम कर रहा था। वह मार्टिन लूथर, जॉन केल्विन, जॉन मैक्स तथा अन्य अनेकों में क्रियाशील था। लिखा है यहां पर, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यह उनकी प्रशंसा के शब्द हैं। धर्म सुधार के कारण विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना पुनः मुख्य शिक्षा में आ गया है। यही वह विश्वास है जो कर्म उत्पन्न करता है। कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आज हम सोचते हैं कि हम नमूनों का पालन कर रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं, परंतु सच तो यह है कि हम मृतक हैं। आराधकों की कमी नहीं है, परंतु उनकी रुचि परमेश्वर के वचन में नहीं है। कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यह एक गंभीर दोषारोपण है। यह आपके लिए भी हो सकता है। धर्म सुधार आंदोलन को संपूर्ण सत्य के विकास का अवसर नहीं मिला था, जैसे अंत समय की शिक्षा और भविष्यवाणी की शिक्षा आदि। इनका विकास अब होने लगा है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:2 में लिखा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यह दूसरा दोषारोपण वरन चेतावनी है। सर्दीस में इसका विशेष अर्थ था। जैसा मैंने पहले बताया कि सर्दीस पहाड़ पर बसा हुआ था और वहां पहुंचने का एक ही मार्ग दक्षिण की ओर से था, अतः उन्हें उसी दिशा में अपनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करनी होती थी। फिर भी इतिहास में वे 2 पराजित हुए हैं, क्योंकि उनके पहरवे सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर सो गए थे। 549 में कुसरो की मादी सेना ने चट्टानों को लांघकर नगर में प्रवेश किया था और 218 में एंथियोकस महान ने सर्दिस पर विजय पाई थी, क्योंकि एक्रेते वासी चट्टानों पर से पार चले गए थे। प्रभु सर्दिस की कलीसिया से कहता है कि वे जागृत हो जाएं। यह बड़ी ही लज्जा की बात थी, क्योंकि इतिहास में 2 वे सोते हुए पकड़े गए थे। अतः प्रभु यीशु उनसे कहता है, तुम सो मत जाना। मेरे प्रियो, हमने आज मसीह के आगमन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। जी हां, मसीह के आगमन के प्रति सजग रहना त्याग कर प्रभु के आगमन से पूर्ण कुछ अनिवार्यताओं को भी पूरा करने में हमें ध्यान लगाना है। आज प्रभु का आगमन अत्यधिक निकट है। वह अगले पल भी आ सकता है, वह कल भी आ सकता है। आप मेरे नाम से प्रभु के आगमन को कल के निश्चित पर न रखें। आप यह न सोचें और यह न सोच करके निश्चित हो जाए कि अब कब आएगा। कई लोग ऐसा ही सोचते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि वह 100 बाद आए, परंतु हमें उसके आने के लिए सदैव तैयार रहना है। सर्दीस को बैरी के आगमन की जानकारी नहीं थी और हमें प्रभु के आगमन का निश्चित समय नहीं मालूम है। अतः किसी भी पल कलीसिया उठाई जा सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। यही कारण है कि प्रभु के आगमन का समय नहीं दिया गया है। पौलुस तीतुस को लिखता है कि हम उस धन्य आशा की बाट जोहते रहें। तीतुस की पत्री 2:13 में, यदि समय पता हो तो कोई भी तैयार रहेगा, परंतु अनिश्चित समय के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता है। प्रभु यीशु प्रोटेस्टेंट कलीसिया से कहता है कि वह सदा सजग रहे, अर्थात सरदीस को। कहता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता को पूर्ण रूपेण नहीं खोजा है। मनुष्य का पूर्ण भ्रष्ट होना, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना तो उनकी शिक्षा में है, परंतु अन्य अनेक प्रेरितों की शिक्षा अभी शेष रहती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:3 में लिखा हुआ है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर रहना है, क्योंकि वे मरने वाले हैं। हम मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था पर बल देने की अपेक्षा हमारे सांसारिक स्वभाव को पैबंद लगाकर प्रथाओं के पालन के लिए प्रेरित करते हैं कि मसीही जीवन जीने में सक्षम हो। विश्वास द्वारा उद्धार पाने के प्रचार की अपेक्षा हम विधि पालन के संदेश को सुनाते हैं कि जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो। लिखा है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदाचित जान ना सकेगा कि किस घड़ी तुम पर मैं आ पड़ूंगा। तुर्किस्तान में मिट्टी का कटाव बहुत होता है, अतः वह पर्वत 2000 वर्ष पूर्व अत्यधिक दुर्गम स्थान था। सरदीस पहुंचने पर या सरदीस पहुंचने का एक ही मार्ग था, परंतु फिर भी बैरी 2 बार वहां पर प्रवेश कर गए। यह उनके लिए बड़ी लज्जाजनक बात थी। प्रभु यीशु उनसे कहता है, सजग रहो, सावधान रहो, सोना नहीं जागते रहो। वह कभी भी आ सकता है। प्रभु यीशु का आगमन भी किसी भी पल हो सकता है, लेकिन क्या आज आप तैयार हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:4 में आगे लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इससे योग्य हैं। मेरे प्रियो, इसराइल में संपूर्ण जाति की अपेक्षा एक छोटा समुदाय ही परमेश्वर के प्रति निष्ठावान था। यहाँ भी कलीसिया से कहा गया है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। लूकारचित सुसमाचार 12:32 में प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को कहता है, हे छोटे झुंड। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में आज भक्त जन हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु के निष्ठावान वे बने हुए हैं और परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं। वे पाप के कारण अशुद्ध नहीं होते हैं, न ही वे शारीरिक अभिलाषाओं के दास हैं। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने भी धर्मात्मा उत्पन्न किए हैं, जिनमें मार्टिन लूथर और जॉन केल्विन सबसे ऊपर हैं। परंतु जॉन कॉनक्स ने भी स्कॉटलैंड के लिए बहुत सेवा की। जॉन बन्यन, जिसने पिलग्रिमेज प्रोग्रेस नामक पुस्तक को लिखा है और पुस्तक में अपने उद्धार की कहानी सुनाई है, परमेश्वर ने उसे बड़ी अद्भुत रीति से बचाया था। जॉन वेस्ली को अद्भुत रीति से बचाकर परमेश्वर ने उसके द्वारा इंग्लैंड की सुधि ली, और इतिहासकार इसका श्रेय जॉन वेस्ली को देते हैं। अन्यथा फ्रांस के समान इंग्लैंड भी क्रांति के बाद डूब जाता। वेस्ली सबसे महान अंग्रेज कहलाता है, क्योंकि उसने किसी भी युग के अंग्रेज नायक से कहीं अधिक इंग्लैंड के लिए काम किया। अफ्रीका में प्रचार मार्ग तैयार करने वाला डेविड लिविंगस्टन और उसके बाद अफ्रीका का प्रचारक जॉन मॉफर्ट, भारत में प्रचार करने वाले विलियम केरी और उनके अनुज हेनरी मार्टिन, हवाई द्वीप समूह में पेंतिकोस्त के बाद दूसरा महान प्रचार अभियान लाने वाले टाइटस कॉन। मेरे प्रियो, प्रोटेस्टेंट कलीसिया में अशुद्ध न होने वाले अनेक जन हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने में कोई न कोई अवश्य ही रह जाएगा। इसी प्रकार रोमी कलीसिया में भी अनेक ऐसे धर्मात्मा हुए हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी प्रणाली की प्रशंसा की जाए। मसीही विश्वास की महान शिक्षाओं से चूक जाना विधर्मी कलीसिया उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, अब पद 5 एक कठिन पद है। लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:5-6 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ध्यान दें, लिखा है जो जय पाए, मसीह के लहू द्वारा जय पाने वाला, न कि अपनी शक्ति बुद्धि और योग्यता से जय पाने वाला। यीशु की यह एक बात समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यह एक बड़ी रोचक बात है कि वंशावलियों की दो ही पुस्तकें हैं। पहला उत्पत्ति की पुस्तक 5:1, आदम की वंशावली की पुस्तक जो मृत्यु की पुस्तक है। दूसरा मत्तयरचित सुसमाचार 1:1, प्रभु यीशु की वंशावली की पुस्तक। वंशावली का उल्लेख के दो ही बार इसको किया गया है, एक बार आदम के लिए और एक बार प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु की वंशावली की पुस्तक जीवन की पुस्तक है और मेरे विचार में आप मसीह यीशु में विश्वास करके इस पुस्तक में नाम लिखवाते हैं। अब एक प्रश्न है, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाने के बाद क्या काट भी जाया जा सकता है? कहने का अर्थ है, क्या इसे काटा जा सकता है? क्या आप उद्धार से वंचित हो सकते हैं? यदि ऐसा होता तो प्रभु यीशु कभी नहीं कहता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:28 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी। धर्मशास्त्र में बार बार हमारे उद्धार का आश्वासन दिया गया है। मेरे प्रियो, मैं एक प्रसिद्ध लेखक का उदाहरण देता हूं या आपको सुनाता हूं। किसी ने ध्यान आकर्षित किया कि किसी के नाम काटने की अपेक्षा किसी का नाम न काटने का उल्लेख अवश्य किया गया है, परंतु निहितार्थ यह है कि ऐसी संभावना हो सकती है। इस आधार पर किसी ने जीवन की पुस्तक को उद्धार पाने वालों की पुस्तक की अपेक्षा उनके नामों की पुस्तक कहा है जिनके लिए मसीह मर गया। इसका अर्थ है सब मरने वाले। यदि उन्होंने परिपक्वता में प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया और मर गए तो उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। दूसरी ओर प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता ग्रहण करने वालों का नाम उसके अस्थायी रूप से लिख लिया जाता है, उनके नाम पिता परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष स्वीकार किया जाता है। मेरे विचार में यह एक अच्छी व्याख्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस पुस्तक को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13:8, 17:8, 20:12-15, 21:27, 22:19, इन संदर्भों में भी जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने और नाम न होने की चर्चा की गई है। हम इसकी चर्चा 22 में दिए गए संदर्भ पर आने पर करेंगे। मेरे प्रियो, कुछ विचारकों के अनुसार 20:12 में जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया है वे विश्वास के अंगीकार की पुस्तक और वास्तविकता की पुस्तकें हैं। उनके विचार में विश्वास के अंगीकार की पुस्तक से नाम काटे जाते हैं, परंतु वास्तविकता की पुस्तक से नाम नहीं काटे जाते हैं। अन्य विचारकों के अनुसार आरंभ में सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, परंतु कुछ नाम बाद में काट दिए जाते हैं। वे जो प्रभु यीशु के विषय निर्णय ना ले पाए या उसका त्याग करें, उनके मरने पर उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। इन दोनों विचारों पर आपत्ति भी की गई है तो प्रशंसा भी की गई है। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि कहने का अर्थ यह है कि सर्दीस में किसी का उद्धार पाना आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रभु यीशु कहता है कि कुछ के नाम जीवन की पुस्तक से काटे नहीं जाएंगे। सर्दीस में भी कुछ लोग उद्धार पाएंगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं, इसे जानना है। मैं यह नहीं मानता कि उद्धार पाने के बाद आप कभी अपने उद्धार से वंचित होंगे। जी हाँ, एक बार यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं और आप उद्धार से वंचित नहीं होंगे। यही मेरा कहना है और परमेश्वर का वचन भी यही हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, आज आपको जानना है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है सिर्फ उसी का नाम उस पुस्तक में लिखा जाता है। आज निर्णय आपको लेना है कि क्या आप उद्धार पाए हैं या नहीं, पाना चाहते हैं या नहीं। यदि पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और उससे कहें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में आपको आने देना चाहता हूं, ताकि आप भी उस उद्धार को प्राप्त कर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।